आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 1972 में आपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली और 1973 में आपने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों के अतिरिक्त अनेक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, अफ्रीका इत्यादि ईश्वरीय सेवा अर्थ आप भ्रमण करते रहते हैं। आपने अनेक सम्मेलनों, विचार संगोष्ठियां तथा आध्यात्मिक परिचर्चाओं में भाग लिया। आप 8 भाषाओं में छपने वाले ईश्वरीय ज्ञान और योग के पत्राचार कोर्स के लेखक व निर्देशक हैं। अपने विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आप संस्था के अंग्रेजी मासिक प्रकाशन प्यूरिटी के संपादक तथा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सचिव भी हैं। और अभी हम उनसे सुनेंगे अथक सेवा और अटूट साधना, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे ब्रिजमोहन भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, कल दादी जी ने हाथ उठवाए थे कि बहुत से भाई बहन फर्स्ट टाइम प्रथम बार यहां आए हैं इस क्लब में। इस सभा में कितने प्रथम बार वाले बैठे हैं वो जल्दी से जल्दी हाथ उठाइए। इसमें भी काफी बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज हम थैंक यू नीचे कर लीजिए। आज हम अथक सेवा इस विषय पर बातचीत करेंगे और दूसरा भाग है उसका अटूट तपस्या। वास्तव में इसको उल्टा करना चाहिए, पहले तपस्या फिर सेवा, है ना? तीन बातें कही जाती हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा ब्राह्मण बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं और त्याग भी जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन जो तपस्या है वो जीवन भर की चीज है। तो इसलिए जैसे किसी उम्र कैदी को चक्की पीसने वाली सजा हो जाती ना, बामुशक्कत कैद है, इसी प्रकार से हमारे ब्राह्मणों को बाबा ने तपस्या सारी उम्र के लिए दी है। जितनी तपस्या उतनी सेवा। फिर भी जो पहले कहा गया वो पहले करना है। वास्तव में सेवा ब्राह्मणों का बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। अगर ब्राह्मणों को तुरंत खुशी लेनी हो तो कौन सा सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ब्राह्मण जल्दी से लग जाते हैं, अपनी रुचि से लग जाते हैं? वो कौन सा है? सेवा। क्यों ऐसा है? किसी भी ब्राह्मण को सेवा मिल जाए तो उसको नींद नहीं लगती, टाइम का पता नहीं रहता, भोजन करने का भी पता नहीं रहता। हमारी लौकिक माँ थी, वो बीमार रहती थी, शरीर से उठ नहीं सकती थी। उसको कोई जिज्ञासु दे दो, उसको दर्द भी भूल जाता था, सब भूल जाता था। एक घंटा उसको समझाती रहेगी, हम कहेंगे माता जी अब बस करो, नहीं नहीं, उसको बड़ी खुशी होती थी। हर एक को ऐसा अनुभव है। इसका कारण क्या है? कि देने में हम कौन, क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? हम देवता। तो देने में खुशी है, लेने में बोझ है। आप हमेशा देखोगे कि देंगे तो आपको खुशी होगी, लेंगे तो आपको बोझ चढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है गेस्ट के तौर पे, तो क्या होता है, वो जिसके घर में जाते हैं वो उसको कुछ ना कुछ खाने पीने को, आजकल सर्दियां हैं, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट बादाम देते हैं, उसके आगे करते हैं थाली में रख के, ट्रे में रख के। और लेने वाला क्या करता है, लेने वाला एक आध उठा के ना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो कहता और ले लो। बड़ी मुश्किल से बड़ी तकलीफ से, इतना वजन तो नहीं होता बादाम में, फिर भी एक बादाम और ले लेंगे। फिर कह के नहीं 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 और लो, बड़ी शर्म से वो एक और ले लेंगे, मुट्ठी कोई नहीं भरता। अच्छा क्यों, फ्री में मिल रहा है, दूसरा खुशी से दे रहा है, क्यों? अभी आप देखिए उसी बात को उल्टा कर दो, वो आपके घर आ जाए फिर क्या होगा, आप उसको कहेंगे लो लो, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा एक ले लेता हूं, जैसे उसके दांत में तकलीफ हो, क्यों नहीं लेता है? आप देखेंगे इसका कारण यही है कि देने में खुशी है, लेने में बोझ है। तो दुनिया के लोग इसीलिए आजकल दुखी हैं, बोझ वाले हैं, कि वो सब लेवता बन गए हैं, वो समझते लेने में फायदा है। और बाबा के बच्चे हल्के इसीलिए हैं कि वो ये जान गए हैं देने में फायदा है। ठीक है, अब हमारे चार सब्जेक्ट में लेने के सब्जेक्ट कौन से हैं और देने के सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान, ज्ञान आप बाबा से ज्ञान लेते हैं या देते हैं? लेते हैं, ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं। अच्छा, उसमें से कुछ दे देते हैं, ज्यादातर तो लेते ही हैं, लिए हुए में से थोड़ा सा दे देते हैं। अच्छा, तो लेने का सब्जेक्ट हो गया ज्ञान। योग, योग में आप भगवान से लेते हैं या भगवान को देते हैं? शक्ति लेते हैं, तो वो भी लेने का सब्जेक्ट हो गया। धारणा का तो मतलब ये लेना है, पतीले में दूध डालना मैंने धारणा, तो धारणा में भी लेते ही लेते हैं। जब आप तीनों सब्जेक्ट में ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, किसी गाय को आप चारा खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, वो दूध देवे ही नहीं, तो क्या होगा, उसका पेट फूल जाएगा। इसी प्रकार से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देने का है, वो कौन सा है? सेवा। तो इसलिए आपको खुशी इसलिए होती है कि आप कुछ देते हैं, तो कभी थकेंगे नहीं सेवा में। अब मान लीजिए मुझे बहन जी ने बिठाया यहां, तुम बोलो, खैर मेरा तो टाइम फिक्स है, लेकिन मुझे कोई कहे बोलते जाओ, इतने भाई बहन सुन रहे हैं, मैं तो शाम तक बोलता जाऊंगा, क्योंकि दे रहा हूं खुशी रहेगी। आप थक जाएंगे थोड़ी देर के बाद, कहेंगे अब इसकी क्लास पूरी हो, भोजन का टाइम हो गया, चलो भाई चले, है ना, एक क्लास पहले सुनी अब एक दूसरी सुनो, क्योंकि आप ले रहे हैं। अगर आप में से किसी को यहां बिठा दो कि आपने सुनाना है, तो आप भी थकेंगे नहीं, दूसरे थक जाएंगे, मैं थक जाऊंगा। इससे क्या पता लगता है कि देने में खुशी है। तो सेवा का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और हर एक को अनुभव है। किसी को पर्चे बांटने को दे दो, वो भी जाके खुशी खुशी, चाहे कोई पर्चा नहीं भी लेगा, उसके पीछे जाके भी कहेगा भाई पर्चा तो ले लो। इसी तरह से अब हमारा विषय सेवा, तो आप सब करते ही हैं। अगर आपकी जगह किसी दूसरे को सेवा की दे दी जाए, तो कभी कभी ये भी ख्याल आ जाता है मुझे नहीं मिली ये सेवा, इतना सेवा का मजा है। तो बाबा ने क्या स्लोगन दिया हुआ है, सेवा करते हो या क्या, आगे क्या है, या मेवा खाते हो, ठीक है ना, कर सेवा खा मेवा कहा जाता है। तो वास्तव में सेवा करना नहीं है बल्कि मेवा खाना है। मेवा में तो शक्ति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य फल भी मिलता है। हाँ, ज्योतिषी लोग हर चीज के दो फल बताते हैं, एक प्रत्यक्ष फल जो उसी वक्त मिल जाए, एक भविष्य फल जो जमा हो जाए, तो दोनों फल आपको मिलते हैं। परंतु हमारा आज का विषय सेवा नहीं है, उसमें कुछ और भी जोड़ा हुआ है, वो क्या है, अथक सेवा। अब आप देखिए कि आप थकते कब हैं और अथक कब बनते हैं। आपको पता है बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है, किसी माता का छोटा सा बच्चा हो, बिल्कुल छोटा, तो माता को उसका ध्यान रखने के लिए रात को भी जागना पड़ता है। बिल्कुल छोटा है, उसका सिर कहीं पिचक ना जाए। मेरी माँ ने मेरे ध्यान नहीं रखा, मेरा सिर पिचका हुआ पीछे से, इसीलिए मैं टोपा पहन रखा है। अच्छा, आप देखिए, वो ध्यान रखती हैं कि इस राना ठीक रखे, उसको आसा पासा पलटाते रहे, नरम होता है वो। तो इसी प्रकार से माता से सुबह पूछो, माता जी आप सारी रात सोई नहीं, थक गई होगी, क्या कहेगी? थक गई होगी वो, उसको इतना बच्चा प्यारा लगता है, वो कहेगी नहीं 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 मैं तो नहीं थकी। उसको कह भी दो सो जा तू, वो सोएगी नहीं। क्यों? कि उसका स्नेह, उसका प्यार उस बच्चे से है, तो थकेगी नहीं। अगर हम सबको कहा जाए कि आज देखो कल बाबा ने आना है, आज का भोजन कैंसिल, आपको यहीं बैठ जाना है और रात भर आपने योग लगाना है, क्योंकि क्या पता कल विनाश आ जाए, तो आप रात भर सुनकर क्या होगा, आप अभी थक जाओगे, पता नहीं मेरे दर्द होना शुरू हो गया। क्यों? कि उतनी रुचि नहीं है, है ना। बहुत रुचि पैदा करके भट्टी में बिठाया जाता है, स्पेशल तिलक लगाया जाता है, भोजन हल्का कराया जाता है, सबको इकट्ठे बिठाया जाता है ताकि एक लकड़ी को आग ना लगे, दूसरी से पकड़कर लग जाए, एक दूसरे को देखकर तो बैठते हैं। अब फर्क क्या हुआ कि वो तो काम करने के बाद भी नहीं थके, और वो जो थे वो सुनकर ही थक गए, अरे इतना इतना बैठना पड़ेगा। तो कारण यही है, बाबा ने कल परसों ही मुरली में कहा था कि अगर आप शरीरधारी होकर सेवा करोगे, अगर आप देह भान में आके सेवा करोगे, तो शरीर तो थकने वाली चीज है, शरीर तो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, शरीर को तो नींद भी चाहिए, आराम भी चाहिए, हर चीज चाहिए, तो इसलिए थक जाओगे, किसी लिमिट के बाद थक जाओगे। अगर आप आत्मा बन के सेवा करोगे, शरीर बन के नहीं करोगे, तो आप नहीं थकोगे। लेकिन आत्मा भी कौन सी, जैसे शरीर बोझ वाला होता है, भारी होता है, तो व्यक्ति को चलने में दिक्कत होती है, थक जाता है। लेकिन अगर शरीर हल्का फुल्का है तो व्यक्ति ज्यादा चल सकता है। इस वक्त हमारी आत्मा हल्की फुल्की है या बोझ वाली है, किस वाली है? आत्मा तो बोझ वाली है, क्योंकि प्राणी आत्मा है। तो जब आत्मा ही बोझ वाली है और आत्मा बनकर आपने सेवा की, तब भी आप थक जाओगे, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, किसी से किसी का परचिंतन आ जाएगा, उसको ये सेवा दे दी, मुझे ये सेवा दे दी, रोटियां बनाऊं मैं, जाके बांटे वो हैं, तो जो बांटेगा वो तो जाके दादी को रोटी खिला रहा, ये नहीं पता चूल्हे के अंदर मैं गर्म हो रही हूं, है ना। तो आ गया ख्याल तो थके जाएंगे, इसको भाषण करने बिठा दिया, मुझे कह दिया तुम जाओ बाहर जाके पर्चे बांटो, हैं, तो थक जाएंगे। पर चिंतन थका देगा, ईर्ष्या थका देगी, तो मन के अंदर जो बोझ हैं वो थका देंगे। किस वास्ते? आत्मा बोझल भी सेवा नहीं कर सकती। फिर ये है, आगे चलो कि मुझे सेवा के कुछ फल मिलना चाहिए, कोई मुझे कहे तो सही कि तुम सुबह से शाम तक लगे रहे, देखो खड़े खड़े तुमने इतना काम कर दिया, शाबाश तो कोई दे, किसी ने हमें पूछा ही नहीं कि तुमने सेवा की, क्या फायदा हुआ सेवा करने का, उनको तो पता भी नहीं लगा मैंने सेवा की है, इतनी सेवा की, मुझे जाके पीछे के दरवाजे से कहा यहां आके बैठ जाओ, कम से कम सेवा की थी, कुछ आगे ही बिठा देते, कुछ बाबा से ही दृष्टि दिलवा देते, उससे भी आप थक जाओगे। इसलिए नेगेटिव, फिर मान शान, कुछ प्राप्ति की इच्छा, कच्चा फल खाने का शौक, ये सब चीजें भी आपको थका देंगी। तो बाबा ने ये तो कहा है कि बच्चे आबू रोड से माउंट आबू चले जाओ, बाबा बाबा कहते चले जाओ, आप थकोगे नहीं। एक बारी बाबा ने बहनों को सचमुच पेठा कद्दू उठवा करके यहां से वहां तक चलाया था, कोई नहीं थका। लेकिन उस समय बाबा का प्यार था, बाबा देख रहा है, अभी भी दादियां आके खड़ी हो जाए, तीन चार बड़ी दादियां, आप सबको कहें पेठा कद्दू उठा के चलो, आप सब चल पड़ोगे, या आपको कहें आपका टीवी निकल रहा है तब भी चल पड़ोगे। सवाल ये है कि ये नहीं कि कुछ हो रहा है, कुछ देख रहा है, कोई मेरा नोटिस कर रहा है, मेरी सेवा का कुछ प्रतिफल निकलने वाला है, ये नहीं। परंतु सेवा में सदा खुशी रहे, क्योंकि कोई थका हुआ व्यक्ति होगा, खुशी नहीं होगी, उसको थकावट होगी। कभी कभी किसी बहुत वजन वाले व्यक्ति को भी बहुत खुशी हो तो वो थकता नहीं है। देखा आपने कभी किसी बहुत मोटे ताजे व्यक्ति को आप कह दो तुझे 10 करोड़ की लॉटरी है, ऊपर वाली 5वीं मंजिल में मिलनी है, लिफ्ट खराब है, तो क्या करेगा वो? वो भाग भाग के चढ़ जाएगा। क्यों? कि खुशी है, उसको नहीं लगेगा मेरा दो मन वजन है। या भय से भी कभी कभी व्यक्ति अशरीरी हो जाता है। किसी के पीछे सांप लगा दो, ये जो सोफे पर बैठे हैं इनको कहो के नीचे एक बहुत काला कोबरा आ गया, अभी जरा देखना, तो शरीर वगैरह सब भूल करके ऐसे हो जाएंगे जैसे शरीर है ही नहीं, लाइट हो जाएंगे। भय से भी हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी में हर व्यक्ति लाइट हो सकता है, लेकिन सदा काल के लिए निरंतर अथक सेवा, जैसे कहते ब्रह्मा बाबा ने सेवा की, मम्मा ने सेवा की, दादियां सेवा कर रही हैं। अब आप अपना दिनचर्या देखो, चलो दादियां तो सामने दिखती हैं, उनका देखो वो दिन में कितने लोगों से मिलती हैं। यहां मिलने वाले बैठे बैठे थक जाते हैं, अभी नंबर नहीं आया मेरा, 1 घंटा हो गया। जो मिल रहे हैं वो कितना टाइम लगता होगा उनको, कितनी उनकी एनर्जी लगती होगी, वो थकते हैं नहीं? क्योंकि सेवा में ना थकने के कई तरीके, कई कारण हैं। एक तो ये, अगर आपको प्यार होगा, किसी भी चीज से प्यार होगा, उसके लिए सेवा करने में आप नहीं थकेंगे। कोई आपका प्रिय जन कह दे कि मुझे आम खाना है, आम का तो सीजन नहीं है, सारे माउंट आबू से आम ढूंढ के ले, ओम शांति। तो एक तो पहली बात यह है, जहां प्यार होगा वहां सेवा नहीं लगेगी, खुशी होगी कि हम उसको खुश कर रहे हैं जिसके साथ हमारा प्यार है। तो हमारी सेवा का नाम है ईश्वरी सेवा, है ना? हम किसी मनुष्य आत्मा के लिए सेवा नहीं करते, परमात्मा के नाम पर करते हैं। और जितना जितना जिसको ज्यादा परमात्मा पिता से प्यार है, उतनी उसको सेवा नहीं लगेगी। उससे निरंतर सेवा कराओगे, उसको वो करते रहेंगे, खुशी उसकी बढ़ती रहेगी। और जहां खुशी होती है वहां थकावट नहीं होती। दूसरा, क्या सचमुच हम परमात्मा की सेवा करते हैं या अपनी सेवा करते हैं? ये भी एक प्रश्न है। भले हम बाबा के नाम पे सेवा करते हैं, दूसरों को बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ाने के लिए सेवा करते हैं, बाबा का सत्मार्ग दिखाने की सेवा करते हैं, या उस काम में मदद करते हैं, कोई स्थूल सेवा करके, कोई धन से सेवा करके, समय से करके, लेकिन करते किसकी सेवा है? वास्तव में हम अपनी ही सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि निष्काम सेवा नाम की कोई चीज होती नहीं। वैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि निष्काम सेवा करो। निष्काम सेवा मैंने जिस सेवा का फल की इच्छा न हो। अच्छा, लेकिन इच्छा हो या ना हो, अच्छे कर्म का अच्छा फल, दूसरे कर्म का दूसरी तरह का फल तो बंधा ही हुआ है। और इसलिए वास्तव में हम ये अपनी सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये अंदर में ज्ञान है कि ये सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा, आध्यात्मिक सेवा है, तीन पैर पृथ्वी देना है, सेंटर खोलना है, या सेवा में मददगार बनना है, इससे आपको क्या मिलेगा? पता है ना क्या मिलेगा और कितनी पीढ़ियों के लिए मिलेगा? कि हम यहां बैठकर, ऐसी दुनिया में कोई सेवा नहीं है जिससे आप 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई एक टाइम में, थोड़े टाइम में कर सके। और इतनी ऊंची सेवा है जिससे दूसरे को रोशनी मिल जाए, वो भी सेवा में लग जाए, और पावन बनने में और दुनिया को पावन बनाने में मददगार बने। इसलिए हम ये सेवा केवल अपने लिए नहीं करते और दुनिया के जितने लोग अपने लिए करते हैं। बाबा ने मुरली में कहा फौजें भी जो लड़ती हैं वो बादशाह के लिए लड़ती हैं। या अपने लिए तो करते ही हैं लेकिन दूसरों को बनाने के लिए भी करते हैं। एक होता है क्या निर्बंधन, एक होता है निर्बंधन बनाने वाला। तो हम क्या हैं, निर्बंधन बनने वाले हैं या निर्बंधन बनाने वाले हैं? ये बात ठीक है कि जब तक हम अपनी सेवा नहीं करेंगे हम दूसरे की नहीं कर सकते। मान लो कोई नदी है तो नदी के अंदर कुछ खड्डे हैं पहले से ही, तो पहले पानी आएगा तो किसको भरेगा, आगे जाएगा या खड्डों को भरेगा? पहले वो खड्डों को भरेगा, जो बचेगा वो आगे जाएगा। इसी प्रकार से स्व कल्याण के बगैर आप विश्व कल्याण या दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए ये ज्ञान दो पर्पस के लिए होता है, एक अपना कल्याण करने के लिए, एक विश्व कल्याण करने के लिए। लेकिन विश्व कल्याण आप जब भी कर सकते हैं, दान आप जब भी कर सकते हैं, अगर आप पहले अपना पेट भरेंगे, पहले आपके पास अपना खाना पीना ठीक होगा तभी तो आप दान करेंगे ना। या आजकल की सरकार की तरह है कि अमेरिका से उधार ले लो, नेपाल को डोनेशन दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए अपने सरप्लस में से दान किया जाता है। लेकिन बाबा ने ये ज्ञान बताया हुआ है कि यदि आप केवल सो कल्याणकारी रहे, सारे ज्ञान सारी योग सारी धारणा सारी सेवा का अपने लिए ही अपने कल्याण के लिए ही किया, तो आप कौन से युग में जाएंगे, सूरजवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी? सो कल्याणकारी चंद्रवंशी में जाएंगे, विश्व कल्याणकारी सूरजवंशी में जाएंगे। ये तो क्लियर होना चाहिए ना। तो जो विश्व कल्याण करने का मतलब है अपना कल्याण तो पहले करेंगे ना, अपना तो करना ही पड़ेगा। अपना करे नहीं विश्व का करना शुरू कर दे तो उसकी अवस्था कुछ दिन खुश रहेगी फिर डाउन हो जाएगी। इस वास्ते जो सेवा है वो दूसरों की सेवा है, अपनी सेवा उससे पहले है। लेकिन हम अपनी करते हैं या दूसरों की करते हैं, दोनों प्रकार की सेवा का लाभ किसको है? विश्व कल्याण से आपका 21 पीढ़ी का अच्छा पद बनता है। बाबा ने कहा हुआ नॉलेज इज वेल्थ एंड योगा इज हेल्थ। अगर आपको अपने विकर्म विनाश करके अपने को सदा हेल्दी बनाना है तो योग है। अगर केवल हेल्दी बनाते रहोगे तो मुक्ति में चले जाओगे, ये भी बाबा ने कहा है एक दो दिन पहले। इसलिए आपको वेल्दी भी बनना है। तो नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ज्ञान और योग दोनों के जरिए आप सेवा करेंगे और खास तौर पे दूसरा भी योग लगाएगा तो हेल्दी बनेगा। परंतु ये सारी सेवा से कितना फायदा है, तो दूसरी पॉइंट ये है, पहली पॉइंट के प्यार में थकते नहीं हैं, दूसरी पॉइंट जहां फायदा होगा उसमें भी नहीं थकते हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जब बॉम्बे में शिप आते थे, बॉम्बे में बाबा उस समय व्यापारी थे और वैसे भी किसी दुकानदार के पास जैसे दिवाली के या किसी दिन त्यौहार के अंदर दुकानदारों को ज्यादा काम करना होता है, तो ये जानते हैं ये हमारा सीजन है, रात दिन लग करके भी शिप रात को भी आ जाएगा तो दुकानदार वहां जाते थे कि लोग हमारा सामान खरीद लें, क्योंकि रात दिन लग के भी जो कमाई करेंगे वो हमारी आगे को चलेगी। जैसे हमारे इस शांति वन के बाहर भी दुकानदार हैं, वो क्या ताक लगा के बैठे रहते हैं कि जब कोई सीजन होगा, बाबा का सीजन होगा, बाबा के बच्चे आएंगे तो हम दुकानदारी करेंगे, तो सुबह से लेकर रात तक खोल के रखते हैं। ऐसे राशन की दुकान की तरह नहीं है कि एक बजे बंद हो जाएगी, चार बजे फिर खुलेगी, नहीं, मोनोपोली की तरह नहीं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चों को भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सेंटर के ऊपर आपके सोने का टाइम हो गया, 12:30-1 बज गया, खाना खा लिया, बहनें तो सुबह उठ जाती हैं तो उनको दोपहर को नेचुरली सोना पड़ता है। दुनिया के लोगों को तो ये पता नहीं है, वो समझते हैं कि हम तो दफ्तर जाते हैं हम तो सोते नहीं, बीके क्यों सोते हैं। मैं भी जब दफ्तर में जाता था मैं भी दोपहर को नहीं सोता था, परंतु अब जब हमारा दिन 3:30 बजे शुरू होगा तो 1:30 बजे तक तो उतना दिन पूरा हो जाएगा, फिर मैं एक दो घंटे हम लोग रेस्ट करेंगे ही करेंगे, कुछ कोई कपड़े धोएगा, कोई कुछ करेगा, उस समय कोई जिज्ञासु आ जाए तो क्या करते हैं? फिर अथक सेवा करते हैं या कहते हैं लो आ गया, इस वक्त आ गया, देखो बाहर हमने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि शाम को 5 बजे के बाद है ना ये आ गया। तो जब हमने ये कहा तो हम अथक सेवाधारी हुए। बाबा कहता है जो बिजनेसमैन होता है अगर वो शटर बंद भी कर रहा हो तो कोई दुकानदार आ जाए तो आधा शटर बंद किया तो भी खोल के सौदा दे देता है, या कोई भोजन कर रहा हो तो खाना खाते खाते भी वो कहते अच्छा जी आप खा, नहीं नहीं ठहरो, सौदा दे देता है, तो उसको प्रॉफिट दिखता है। तो हमको कितना अथाह प्रॉफिट है, सबसे ज्यादा दुनिया में कोई दे सकता है अगर प्रॉफिट तो कौन दे सकता है? भगवान दे सकता है। लोग अपना मकान बैंक को देते हैं, एम्बेसी को देते हैं, ज्यादा किराया मिलेगा। तो भगवान के घर पे तो झाड़ू भी लगाओगे हैं, कोई राष्ट्रपति के घर में झाड़ू लगाता उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ये तो भगवान है, उसके घर में तो पुण्य भी साथ मिलता है। इस वास्ते अगर हम अपना प्रॉफिट भी ध्यान में रखें कि मेरा कितना फायदा है, जरा सी उंगली लगाने से गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा। बाबा का माल दूसरे को देना है, मान लो आप यहां भंडारे में सेवा करते हैं, अपने घर में आप किसी को एक रोटी देंगे साधु को, अपना आटा लगाएंगे, अपना तेल जलाएंगे, फिर उसको रोटी देंगे। यहां तो आटा भी बाबा का है, गैस भी बाबा का है, आपने खाली हाथ ही लगाना है। तो आपको दूसरे का माल दूसरे को देने में किसी को इतना फायदा हो जाए तो कौन कहेगा मैं थक गया? वो तो कहेगा ज्यादा बनाऊं। हमारे पांडव भवन दिल्ली में एक माता थी, अब वो बहुत बुजुर्ग हो गई, उसने मैंने एक दिन गिना उसने कितने लाख रोटियां बनाई होगी। वो कहती थी मैंने ही बनानी है, एक दिन उसकी चाकू से उंगली कट गई तो तब भी वो कहती मैंने ही सब्जी काटनी है। फिर हमने हाथ पैर जोड़कर माता जी बहुत लोग आ गए अब आपका रेस्ट का टाइम है, वो कहती थी मेरा भाग्य बनता है। इस वास्ते मैंने देखा उसकी उंगली कट गई, अगर मेरी कट जाती मैं भी सोचता चलो रेस्ट कर लो, उसने कहा नहीं पट्टी बांध के बाबा बाबा करके वो करती रही, फेथ की बात है। इस वास्ते आप देखेंगे जितने अथक सेवाधारी हैं, पहली बात ये है उनको अपना प्यार है बाबा से, दूसरे किस प्रकार का ये पुण्य का कार्य है उससे प्यार है, तीसरी बात है उसमें उनको फायदा दिखता है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलता, सेवा के अंदर आपको ये भी देखना पड़ता है कि सेवा तो सब कर रहे हैं, सारे ही ब्राह्मणों का चौथा सब्जेक्ट सेवा है, फिर सेवा में भी श्रेष्ठ सेवा कौन सी है ना? तो श्रेष्ठ सेवा में आपको फिर बाबा ने बताया हुआ है अगर आप बेहद की दृष्टि रख के सेवा करेंगे, ये नहीं ये मेरा सेंटर है, ये स्टूडेंट मेरे सेंटर पे आ जाए, ये फलानी फैक्ट्री है इसमें मैंने ही भाषण करने जाना है, या मेरे रिश्तेदार की सेवा कर लूं, कोई यहां किसी को ले आऊं उसको अच्छा कमरा दिलवा दूं चाहे दूसरा को वो कमरा ना मिले, ऐसे ऐसे काम करेंगे। बाबा कहता बेहद से हद में आएंगे, मुरली में भी कहा है, तो आप लिमिट में आ जाएंगे, तो ये आपकी सेवा की घटा देगा, या सेवा की मान शान करेंगे कि मैंने कुछ पैसा देना है तो दादी जी के हाथ में दूं, वो भी जरा रुक रुक के दूं ताकि बाकी लोग भी देख लें मैंने दादी जी को लिफाफा दिया है, अच्छा सीधा बॉक्स में डालूंगा कौन पूछेगा। हालांकि बाबा ने कहा हुआ है कि तुम भगवान को देते नहीं हो, उससे लेने के निमित्त देते हो, और जितना गुप्त करोगे अगर दिखा के करोगे तो आधा कट जाएगा, गुप्त करोगे तो डबल होगा। इस यज्ञ में बहुत सारे गुप्त हैं, अगर आप उन गुप्त की स्टोरियां सुनो आप हैरान रह जाओ, लेकिन उनको जो पता है कि गुप्त का फायदा है। वैसे ब्रह्मा भी गुप्त है, सरस्वती को तो कहते ही गुप्त हैं, सारे ब्राह्मण गुप्त हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ पांडव गुप्त रहे, हमारा काम ही गुप्त है, क्योंकि जरा प्रत्यक्ष हुए तो माया खा जाएगी, है ना? तभी बाबा के जितने बड़े सेठ होते हैं वो गुप्त होते हैं, जितने वैसे होते फिलावटी जेवर की तरह वो बाहर से दिखते हैं अंदर खोखले होते हैं, ये दुनिया का ला है। लेकिन गुप्त रहना, और गुप्त में कितनी शक्ति मिलती है वो जो गुप्त करता वही जानता है, इसलिए बिल्कुल भी नाम मान शान आदि की परवाह करना या अटक के सेवा करना या हमें कोई कहे तो मैं सेवा करूंगा या किसी भी प्रकार की ऐसी होगी तो सेवा का फल बहुत घट जाएगा। आपको जैसे गर्मी में आप नहा के आते हैं फिर सूख जाते हैं फटाफट, उस वक्त सेवा की जरा सी खुशी होगी उसके बाद फिर वैसे ही लगेगा, फिर कहेंगे मैंने इतनी सेवा की, कुछ उसका सुख तो प्राप्त नहीं हुआ, खुद ही तुमने ऐसा कर लिया, इसलिए ये भी बात है। फिर सेवा के अंदर विघ्न आते हैं, वो विघ्न अपने संस्कारों के आते हैं। संस्कारों के जो विघ्न होते हैं वो व्यक्ति को भारी कर देते हैं। अब भारी व्यक्ति दौड़ना चाहे या उड़ना चाहे तो कैसे उड़ेगा, भारी व्यक्ति तो मजबूरी से चलेगा। इसलिए आपका किसी से भाव स्वभाव हो गया, आपका मूड ही खराब हो गया, आप किसी को खुशी के ऊपर भाषण करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके अंदर क्रोध आ गया, आपने छुपा भी लिया। बाबा ने मुरली में कहा क्रोध छुपता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सेवा करनी है, नकली मुस्कुराहट से शुरू कर दिया कहना, या आपके अंदर अभी लोभ है, मोह है, अपने लिए प्रॉपर्टी बचा के रखी हुई है, बैंकों में पैसा रखा हुआ है, और किसी को भाषण कर रहे हैं कि भाई विनाश आने वाला है, कुछ नहीं रहेगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, जो तुम देखते हो वो सारा खत्म होना है, तो आपकी बात का असर होगा है? जितना मर्जी बोलते रहो, वो तो राजनीतिक लोग भी बहुत बोलते हैं। इस वास्ते बाबा ने कहा हुआ रूहानी पर्सनैलिटी तुम्हारी धारणा ही सेवा करेगी, और जैसी धारणा है, अगर बिल्कुल शुद्ध धारणा है तो शुद्ध सेवा करेगी, मिक्स धारणा है तो मिक्स सेवा करेगी। जैसे आप हो वैसे ही दूसरे को बना सकते हो। इस वास्ते सेवा में ये भी है कि किसी के अंदर कोई आदत है, किसी को बाबा ने कहा खाने पीने की आदत है, जूते की आदत है, कपड़े की आदत है, कई प्रकार की बातें, छोटी छोटी आदत है, वो आदत भी उसको आराम की आदत है। तो ये सारी आदतें मेरी आदत और ब्रह्मा बाबा की लाइफ, कि ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा क्या करता था और मैं क्या करता हूं, और उस दोनों में मुझे डिफरेंस है, वो सेवा के अंदर विघ्न डालता है। दधीचि ऋषि ने कहा हड्डी हड्डी सेवा में लगाई। सचमुच आप देखोगे ब्रह्मा बाबा का शांति स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, वो सेवा करता है कि नहीं करता है? ब्रह्मा बाबा शरीर में नहीं है, ब्रह्मा बाबा की अस्थियों को भी संस्कार कर दिया गया, लेकिन वो जो शांति स्तंभ बना हुआ है वो सेवा करता है। जाते हैं कितने टूरिस्ट जाते हैं, नए बच्चे जाते हैं, बाबा की शिक्षाएं लिखी हुई, बाबा याद आता है, बाबा कहता कोई अच्छा काम करके जाता है, उसकी जीवनी दूसरे को भी प्रेरित करती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जीवनी ही ऐसी नहीं है, किसी का ऐसे ही शांति स्तंभ बना दो, कौन जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार से वो जो बाद में भी सेवा होती है, वो सेवा हड्डी हड्डी सेवा सचमुच वो है कि बाद में आपकी हड्डियां भी आपके यादगार भी सेवा करें। हमारे भक्ति मार्ग के यादगार बाबा कहता है इतनी सेवा करते हैं कि आज भी लोगों का शरीर निर्वाह चलता है उससे। तो अगर ऐसे कर सकते हैं, अभी तो आप चेतन में हैं, बिल्कुल आत्मा आपके अंदर है, सारा ज्ञान आपके अंदर है, बाबा का आशीर्वाद है, सिर्फ ये है। फिर एक वेस्टेज होता है। बाबा ने कितना आसान बताया है कि बच्चे एक बिंदी लगाओ, एक से दस हो गया, दूसरी बिंदी लगाओ सौ हो गया, तीसरी लगाओ, बिंदी लगाते जाओ वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो इतना आसान कमाई किसी को हो और सारे दिन में केवल एक दो बिंदियां लगा के समझे आहा सारी दुनिया से ज्यादा मैंने कमाई कर ली, मेरा तो इतना हो गया, वो तो ठीक है लेकिन गंवाया कितना? तो ये जो बिंदी लगाना है, ये कोई बैठ करके सामने कोई नक्शा रख के बिंदी लगाना नहीं है, ये बड़ी डीप पॉइंट है। आप देखिए कि जो बिंदी है, बिंदी मैंने क्या होता है, बिंदी की ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, बिंदी का फोटो खींचोगे जिस तरफ से भी खींचोगे बिंदी आएगी कि नहीं कैमरे से, और किसी का भी आप फोटो खींचोगे तो फर्क आ जाएगा, किसी चीज का ऊपर से फोटो खींचो और आएगा, साइड से और आएगा, वो पॉइंट नहीं होगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, है ना? जैसे कहते अंधों ने हाथी देखा था, जो जिसके हाथ में आया वो समझा वही हाथी है। तो आत्माएं जो हैं, शरीरधारी आत्माएं जो हैं, आप अच्छी से अच्छी आत्मा को भी याद कर लोगे, वो बिंदी जैसा काम नहीं करेगी। बिंदी बीज है और आत्माएं हैं फल। मान लो आपने बहुत अच्छा आम का फल देखा, बहुत सुंदर, बहुत खुशबूदार, तो वो क्या एक आम का फल उसको देख के आप क्या करोगे, खा सकते हो, किसी को दे सकते हो, भोग लगा सकते हो, लेकिन एक आम का फल दूसरे आम को पैदा नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? तो आम को कौन पैदा कर सकता है? आम का बीज, एक बीज कितने आम पैदा कर सकता है? तो बाबा क्या है? बाबा बीज रूप है, बिंदु रूप है। अगर हम बिंदी लगाने का मतलब यह कि अगर हम भी बिंदु रूप बने और बिंदु रूप में रहकर सब कर्म करें, जिसको बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ, ऐसे नहीं कागज सामने रख के कहो बाबा एक बिंदी लगी 10 हो गया, फिर बाबा 100 हो गया, वो भी अच्छा है। लेकिन वास्तव में क्या है, कर्म योगी के हिसाब से जैसे अंग्रेजी भाषा में एक सेंटेंस पूरा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, फिर कैपिटल लेटर से दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं, और बाकी कोई भी चिन्ह आप लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कुंडे जैसा होगा, उसके नीचे भी फुल स्टॉप होता है, लेकिन जब कुंडा खत्म हो जाए फिर फुल स्टॉप बचता है। एक और साइन होता है आश्चर्य चिन्ह, वो लंबा लंबा डंडा होता है, उसके नीचे फुल स्टॉप होता है, उसके भी होता है, लेकिन पहले वो डंडा खत्म हो फिर फुल स्टॉप बचता है। इसी प्रकार से अगर हम सचमुच, अगर आप टैक्सी में बैठ जाओ या स्कूटर में और उसने पिछले वाले का बिल भी रखा हुआ हो, मीटर डाउन ना किया हो, तो आप क्या कहते हो? इसके पैसे मैं दूंगा कहते हो, या कहते हो पहले मीटर जीरो करो? क्या कहते हो भाई, ये दूसरे का डाउन करो। पेट्रोल भरवाने जाते तब भी कहते, वो कहते देखो जी मीटर जीरो हो गया। तो हम अगर हर कर्म के बाद अपना मीटर जीरो कर सकते हैं, जिसको कैश ट्रांजैक्शन भी बाबा कहता है, पैसा देके सामान ले लो, आपको खाता नहीं रखना पड़ता। अगर सामान उधार पर लोगे तो खाता रखना पड़ेगा। तो कई बीके पुराने हिसाब को चुकतू करते रहते हैं, नए को बनाना शुरू, उनको पता भी नहीं लगता, वो इस फिक्र में है मैंने माँ बाप से हिसाब किताब तोड़ लिया, सन्यासियों की तरह इससे भी नाता तोड़ लिया, ये भी कर लिया, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं, आगे जुड़ रहा है, पीछे का टूट रहा है, तो वो खुशी नहीं है। खर्चा भी हो रहा है, कमाई भी हो रही, जीरो का जीरो। इस वास्ते हमें एक तो हर कर्म को ऐसा करना है जिसका फल ना निकले, आगे कोई हिसाब किताब ना बने, उसका कर्म बंधन ना बने, क्योंकि कलयुग है यहां कर्म बंधन ही बनेगा, और आत्माओं से रखोगे तो जरूर बनेगा, क्योंकि सभी आत्माएं कर्म बंधनी है। इसलिए बाबा कहता है नाम रूप में ना फंसो, यहां तक कि ब्रह्मा के भी नाम रूप में ना फंसो। बाबा ने क्या शिक्षा दी है, क्योंकि किसी भी मनुष्य आत्मा के नाम रूप में फंसोगे तो क्या होगा, 1/2 जरब 1/2 बराबर है 1/4, है ना, आधे को आधे से जरब दोगे तो पूरा नहीं होगा, आधा और क्वार्टर हो जाएगा। क्यों? कि आत्माओं में कोई ना कोई अवगुण जरूर है। अगर आप किसी भी आत्मा से संपर्क में आओगे, कितने भी उसके गुण देखोगे, लेकिन धारण क्या होगा, उसका अवगुण धारण हो जाएगा, उसका उसको धारण हो जाएगा, उसका उसको हो जाएगा, गुण वैसे ही रह जाएंगे। भले हम कहते हैं गुणग्राही बनो, गुणग्राही बनो, गुण पर आदत पड़ी हुई है 2500 साल से अवगुण देखने की, तो गुण धारण नहीं होगा। जैसे आप जहर के एक कप में, अमृत का एक कप ले लो, जहर का एक कप ले लो, एक कप अमृत में एक बूंद जहर मिला दो तो क्या बनेगा? अमृत बनेगा? वो एक बूंद, थोड़ी सी बूंद है, लेकिन क्या बनेगा? सारा अमृत जहर बन जाएगा, वो बूंद अमृत नहीं बनेगी। अच्छा, जहर के कप में आप पूरा मटका डाल के अमृत डाल दो तो क्या बनेगा? तो भी जहर ही बनेगी। इससे क्या सिद्ध होता है? इस कलयुग के अंदर हमारा कोई आत्मा कल्याण नहीं कर सकती। ऊपर ऊपर से लगता है कि बड़ा अच्छा, इससे मेरे को ये फायदा हो जाएगा, टेम्परेरी, क्योंकि बाहर का रूप हर एक का दूसरा होता है, लेकिन टोटल तौर पे ये समय ऐसा है जिसके अंदर एक ऐसी आत्मा है सिर्फ बिंदु, जिससे जो हमारा सबका कल्याण कर सकती है। उसका किसी से लगाव नहीं है, उसके किसी से पास खातरी नहीं है, वो किसी को कम ज्यादा नहीं करता है, सबके लिए कल्याण का भाव रखता है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है मेरी ड्यूटी लगी हुई है धोबी की तरह, डॉक्टर की तरह, आपको ठीक करना है। तो ऐसी आत्मा जो है उसके जैसा हम बिंदु बनेंगे और बिंदु रूप रहेंगे तो तब क्या होगा, तब बिंदु बिंदु लगाने के अभ्यास से आपको पता लगेगा मेरा लोभ कहाँ है, मेरा मन किधर को झुका हुआ है, कहाँ मेरे आदतें मुझे तंग कर रही हैं, कहाँ मैं, यानी जहाँ मैं आ गया, बाबा के संस्कार से मेरा संस्कार अलग है, ये मेरा ऐसी आदत है, मेरे को ऐसा है, तो वो आपका ठीक होगा, कौमा नहीं लगेगा, को प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा तो बिंदु लगेगा, उस बिंदु से हमारी कमाई होगी। और इसी को कहा जाता है तपस्या। जो कहते हैं अटूट तपस्या, इसका मतलब क्या है? किसी चीज को समझना तो आसान है कि जी चीनी का पाउडर कैसे बनता है, समझना तो आसान है, लेकिन जब वो पाउडर बनाओगे, चक्की पीसोगे, नरम करोगे, जब बनेगा ना, तो हमारी जिंदगी है एक तपस्या। ब्राह्मणों के जीवन का आधार है तपस्या। अगर आप साथ साथ तपस्या करते रहोगे तब आपको बैलेंस रहेगा, वरना थोड़ी सी सेवा करेंगे, जैसे खरगोश और उसकी कहानी सुनाते ना कछुए की, तो चार छलांग लगा के खरगोश कहे मैं आगे हो गया, फिर क्या हुआ? कछुआ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो थक है, एक रस है, और ये जो है ये उछाल मार के ठीक अपने करेगा। इसलिए सभी आत्माओं में कोई विशेषता है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, कोई शरीर से यौवन में है, ये भूल जाते हैं मेरी आत्मा तो पुरानी है, ये पैसा तो खत्म होने वाला है, उसका पॉजिटिव देख के वो उछल मारते हैं कि बाकियों से मैं अच्छा हो गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट मेरे कहाँ गए, टोटल मेरा एग्रीगेट क्या है, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। तो हमारी तपस्या कोई हठ योग के साधुओं जैसी तो है नहीं, कभी बैठ जाओ और बस बैठ के हठ योग करो। हमारी तपस्या लगातार है। वो क्या तपस्या है? किसी के परिवार में ज्यादा लोग हैं, किसी को दफ्तर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, किसी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, कोई गरीब है, कोई कम पढ़ा हुआ है, किसी के घर वाले उसको तंग कर, कई प्रकार की हर एक की परिस्थितियां हैं, कोई का शरीर पुराना है, बीमार रहता है, किसी के घर में कोई बीमार रहता है, किसी का कोई बच्चा नहीं है, कई प्रॉब्लम है, किसी के मुकदमा हुआ है। अब ये सारी प्रॉब्लम हमारे अपने अपने हिसाब किताब की है, बाबा ने तो हमको नहीं दी। अब बाबा कहते हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान देता हूं जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाती है जैसे कोई चीज घुल जाती है एकदम। और बाबा ने करके दिखाया है, बाबा के लौकिक परिवार में कितने बच्चे थे, कितने ज्ञान में आए, कितने नहीं आए, ऐसे सब बहनों ने करके दिखाया है। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं हमारा वातावरण हमारे कर्मों के अनुसार आप ही बदल जाता है, इसमें कोई प्रभु कृपा की बात नहीं है। भगवान कहते मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूं लेकिन परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी ना। कोई किसी मास्टर को कहे मास्टर जी आप इम्तिहान भी मेरी तरफ से दे आओ, हैं आप तो ज्यादा जानते हो, ये तो नियम नहीं है ना। तो हम भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, बाबा तेरे बच्चे बन गए मेरी रेलवे रिजर्वेशन कन्फर्म करा दे, बाबा हम तेरे बच्चे बन गए मेरा मुकदमा जिता दे, बाबा तेरे बच्चे बन गए मेरे बेटे को पास करा दे नहीं तो तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, बाबा हम तेरे बच्चे बन गए ये कर दे, बाबा तेरे बच्चे बन गए वो कर दे। तो बाबा कहता है ये भक्ति के संस्कार हमारे हैं, वहां तो हम दया मांगते आए, कृपा मांगते आए, लेकिन यहां तो आपको नियम बताता है बाबा, नियम पर चलने की शक्ति बताता है, एक बारी फेल हो जाओ दूसरी बारी बताता है, लेकिन करना तो हमें है। इस वास्ते इसको कहते तपस्या। जो मेरी स्ट्रांग प्वाइंट है उसको सदुपयोग करें। जैसे युवा है, अब युवा की स्ट्रांग प्वाइंट क्या है कि युवा का जो मन चाहे उसका शरीर वो करवा सकता है, जो वृद्ध शरीर वाले हैं वो मन चाहे लेकिन शरीर नहीं चलता तो वो करवा नहीं सकते। लेकिन युवा का मन कौन सा है आजकल का? तमोगुणी। अगर युवा का मन गलत काम करवाना चाहे और युवा कर दे शरीर से तो नुकसान भी हो सकता है। और युवा को पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा भी तो पुरानी है जैसे औरों की, शरीर भले नया मिल गया, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, वही हिसाब है। इस वास्ते हमें हर अपनी परिस्थिति का ध्यान रखे, अपनी विशेषताओं को भी अपनी ना समझ के, जैसे कोई आदमी किसी के पास नौकरी कर लेता है, कोई साइंटिस्ट कोई डॉक्टर, उसके बाद जो उसका मालिक कहता है वही करता है, तो मेरी विशेषता कोई है भी तो भगवान ने मुझे रखा है, भगवान को मैंने दी है, भगवान उसको अपने काम में यूज कराएगा, तब तो आपकी विशेषता आपको अभिमान नहीं दिलाएगी। वरना अगर आपने अपनी समझ के कर लिया तो आपके अंदर उसके बदले में अहंकार पैदा हो जाएगा। आप करके देख लो, मान लो किसी को बहुत अच्छी कविता लिखनी आती, बहुत अच्छी कविता लिखनी आती है, बहुत बढ़िया कविता लिखनी आती है, लेकिन उसकी अंदर ये आ जाए कि मेरी कविता दादी के सामने होनी चाहिए, मेरी कविता दादी के सामने होनी चाहिए, उसको आगे कि मेरी कविता, अच्छा तो क्या होगा, उसको क्लास चल रही होगी, उसको पॉइंट भी याद नहीं होगी, उसको ये होगा मेरी कविता कब होगी, मेरी कविता कब होगी, मेरी कविता, उसकी वीकनेस बन गई ना उसकी विशेषता। किसी के पास बहुत धन है, सारी क्लास में सबसे ज्यादा उसके पास धन है, कोई प्रोग्राम हुआ उसने ज्यादा धन दे दिया, तो उसको नशा चढ़ जाएगा, मैंने धन दे दिया, मैंने सबसे ज्यादा दे दिया, सब एक तरफ मैं एक तरफ, बाकी सब्जेक्ट कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हमें अगर निमित्त, बाबा ने हमेशा कहा निमित्त बनो निर्माण बनो, उसका भाव यही है कि हमने बाबा को सरेंडर कर दिया, अब हम ट्रस्टी होकर उसको यूज कर रहे हैं, फिर कभी भी मिसयूज भी नहीं होगा उसका। इस वास्ते ये जो बाबा की पॉइंट्स हैं कि हम देते हैं नहीं है लेते हैं, हम बाबा को क्या दे सकते हैं, जो कुछ हमारा था भी बाबा की वजह से काम में आ रहा है। अगर किसी को बहुत अच्छी सब्जी बनानी आती, बहुत अच्छी आती है, पर उसके घर में सब्जी नहीं तो क्या बनाएगा वो, अच्छा ससुराल में चले गए वहां तो बिल्कुल लोग तंग कर रहे हैं, सब्जी अच्छी भी बनाए तो कहते हैं सब्जी बनाई है, वो क्या बनाएगा। बाबा के घर में उसको सब्जी बनानी आती है, उसने बना दी, सब तारीफ करते हैं, उसका सफल हो गया, किसने करवाया, बाबा ने करवाया ना, ऐसा साधन मिला तो करवाया ना। इस वास्ते बाबा कहता है कि इसको तपस्या कहते हैं, कि हमें अपनी लिमिट के अंदर रहकर दूसरों से ईर्ष्या ना करके, बाबा कहता कोई तुम्हारा चांस जबरदस्ती छीन के भी ले जाए, तुम्हारे नंबर खड़े हैं, तुम उसके पीछे डिस्टर्ब मत हो कि मैंने भाषण करना था, इसने आके मेरा कटवा के अपना करवा लिया, करवा लेने दो, आपके नंबर खड़े हैं, क्योंकि बाबा की अकाउंटिंग और तरह की है। सिर्फ आप अपनी अवस्था को ठीक रखो, आप समझो मैं बूढ़ा हूं इसमें भी कल्याण है, और मैं ऐसा हूं, बाबा कहता कोई विधवा भी हो जाए तो बाबा कहता है इसमें भी कल्याण है, किसी का कुछ भी हो जाए, नौकरी टूट जाए उसमें भी कल्याण है, लग जाए उसमें भी कल्याण है, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें नुकसान हो उसमें भी फायदा है, फायदे में भी फायदा है, फायदा भी नुकसान में बदल सकता है, नुकसान भी फायदा में बदल सकता है, अगर आप सोचो। इसी को तपस्या कहते हैं कि हर एक समय पर हमने अपने समय को सफल किया, हमने अपनी अवस्था को कायम रखा, दूसरे की अवस्था को बढ़ाने में मदद की, उसको भी हमसे कुछ प्रेरणा मिली, उल्टी प्रेरणा भी मिल सकती है, अच्छी भी मिल सकती है, इस वास्ते इसको तपस्या कहते हैं। तो हमारी तपस्या तो लगातार है, तो वो तपस्या अगर निरंतर होगी तो हमारी सेवा भी निरंतर होगी और अथक होगी। इसलिए सेवा, सच्ची सेवा का आधार तपस्या है। तो ब्राह्मणों का अगर कमजोर सब्जेक्ट हमसे पूछो कोई है, वो तपस्या है, और तपस्या कोई बैठने से भी नहीं होती है, तपस्या तो आपकी परीक्षा का नाम तपस्या है, हर समय हमारी परीक्षा आती रहती है, और उस परीक्षा को पास करना, एक तो होता है पास करना, अभी बाबा ने क्या कहा, पास विद ऑनर करना, पास्ट चीज को, क्या हमने पास तो रोज ही हमारा कल का दिन पास हो गया, अब भी 12:30 बजे तक पास हो गया, जो पास हुआ हमने ऑनरेबली पास किया उसमें हमारी तसल्ली है या नहीं है। और प्रेजेंट में भी बाबा ने कहा कि ऐसे गंवाने की बजाय किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, खुशी का दे दिया, संतोष का दे दिया, अपनी तसल्ली, वो गिफ्ट है। और फ्यूचर के लिए भी बाबा ने कहा, कईयों के चेहरे ऐसे मुरझाए हुए होते हैं, उसके ऊपर इतनी लाइनें रेखाएं होती हैं, तो उलझा हुआ व्यक्ति है, उलझन भी तो सेवा में नुकसान करता है, खुद को भी सेवा नहीं करने देता, कोई हिरण भागता है और हिरण की टांगे फंस जाए या सींग फंस जाए झाड़ी में, तो हिरण क्या करेगा, उसको लगा मैं बड़ा सुंदर हूं, मेरे सींग बड़े अच्छे हैं, और सींग उसके झाड़ी में फंस गए, पैर बड़े घटिया पैर तो उसको भगा रहे थे। इस वास्ते हमको उलझन में ना फंसना है ना फंसाना है। तो फ्यूचर की उलझन आपके फ्यूचर से पता लगती है, कि आप शरीर का ध्यान रखते हैं, आत्मा को सुंदर बना रहे हैं, सर्व गुणों से सिंगार रहे हैं, तो ये है इसका साधन। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमन भाई जी।